कश्फ की एक किस्म है जिसके बारे में लोगों को उतना ही तजस्सुस रहता है जितना तजस्सुस इस बात पर रहता है कि हमारे हाथ कोई इसमें आज़म आ जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात सबके सब निकाल के किसी पड़ोसी के घर में फेंक दें, बिल्कुल उसी तरह जैसे अपने घर का कूड़ा करकट समेट के हम पड़ोसी के दरवाजे के आगे डाल देते हैं। हमारी ज़िंदगी में सिवाय खुशियों के और कुछ न रहे। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया था एक बार कि जिन दिनों हम शाह साहब क़िबला हयात थे उनकी खिदमत में जाके बैठा करते थे, तो एक साहब वहाँ आया करते थे। पूरा नाम तो मैं नहीं लेता क्योंकि कभी कभार यहाँ भी तशरीफ़ ले आते हैं, वो शेख साहब थे। उन्हें एक कमाल हासिल था कि अगर बड़े शाह साहब को किसी तरह गुस्सा ना आता हो तो शेख साहब अगर आके आधा मिनट बैठ जाए तो उसके बाद फिर शाह साहब का जलाल संभाला नहीं जाता था। ऐसा नहीं कि उनकी शक्ल से चिढ़ते थे, ये बात भी नहीं थी। शेख साहब हमेशा कोई ना कोई बात इसी अंदाज में करते थे कि वो बिगड़ जाते थे। तो अगर बड़े शाह साहब क़िबला कभी इल्म की बातों पर रागिब हो जाते करने पर तो हम में से एक आदमी जाके बाहर खड़ा हो जाता था कि शेख साहब अंदर ना आने पाए ताकि शाह साहब इल्म की बातें करते चले जाएं। तो शेख साहब एक बार तशरीफ़ लाए हुए थे, शाह साहब मुझसे कोई बात कर रहे थे, वो मुझे याद नहीं कि क्या बात थी। तो ये दरमियान में इंटरप्ट करना चाहते थे। फाइनली एक जगह शाह साहब पॉज किया तो शेख साहब फरमाने लगे कि हजूर आजकल कोई काम हो नहीं रहा, बड़ी दिक्कत आ रही है। इन्होंने कहा और मेरी नज़र शाह साहब पे गई, मैंने देखा कि रंग चेंज हुआ। तो मैंने इन्हें शेख साहब को चुपके से इशारा किया कि मत कहें, लेकिन वो भी शेख साहब थे, वो तो नहीं मानते। शेख साहब ने फिर दोबारा रिपीट किया, जब जवाब नहीं मिला तो शाह साहब फिर गोल कर गए, जवाब नहीं दिया। तो मैंने फिर भी इशारा किया कि जाने दें, मत कहें, लेकिन शेख साहब ने फिर तीसरी बार खासा लाउडली कह दिया। पर शाह साहब ने बड़ा खूबसूरत एक जवाब दिया। तो आंख टेढ़ी करके उनको शेख साहब को कहने लगे कि क्यों मियाँ, मैं क्यों दुआ कर दूं, अच्छा वक्त तुम गुजारो और बुरा वक्त तुम्हारी जगह कोई और गुजारने आएगा। अब तो अगर अच्छा वक्त तुमने जिंदगी में एंजॉय किया है तो बुरा टाइम भी गुजारो। तो वो जो हम इसमें आज़म की तलाश में रहते हैं कि कहीं कोई फकीर आदमी किसी अनगार्डेड मोमेंट पर काबू आ जाए और वो अनजाने में इसमें आज़म ज़ुबान से निकाल दे, तो उसके पीछे हमारी नियत ऐसी ही होती है कि जहाँ कोई ज़रा सी दिक्कत आई इसमें आज़म इस्तेमाल किया और मुश्किल से निकल गए। हम एक बात ये भूल जाते हैं कि रब ताला ऐसी चीज़ों का इंकशाफ उन्हीं लोगों पर करता है जिनकी रूहानी तरबियत इस दर्जे की हो गई होती है कि वो मुश्किलात को मुश्किलात नहीं जानते, वो किसी मुसीबत पर परेशान नहीं होते, फाके पर फाके करते चले जाते हैं, लेकिन कभी ये एहसास नहीं होता कि हम फाके कर रहे हैं। इस सब को वो बड़ी खंदा पेशानी से तस्लीम कर लेते हैं कि ये सब हमारे रब की जानिब से है और हमारा रब इतना मेहरबान है कि वो अगर हमें इस हाल में रख रहा है तो इसमें भी कोई हमारी बेहतरी है। अल्लाह की तरफ से हर हुक्म जो आता है, हर किस्म के हालात जो उसकी तरफ से आते हैं, वो सब हमारी बेहतरी के लिए हैं, क्योंकि हमारा रब इतना मेहरबान है कि उससे सिवाय बेहतरी की और तवक्को रखी नहीं जा सकती, और ये सच है। तो इसी तरह हम कश्फ की उस मखसूस किस्म की तलाश में रहते हैं, वो है कश्फुल कबूर। तजर्बा ये हुआ कि कश्फ की जिस सिनफ से लोग सबसे ज़्यादा जिसके बारे में सवाल करते हैं वो कश्फुल कबूर है, और हकीकत यह है कि कश्फ की तमाम किस्में जो हैं उन सब में अगर किसी का हसूल आसान है तो कश्फुल कबूर ही का है। और इसमें एक चीज़ मैं आपसे बिल्कुल वाज़े कर दूं कि एक जो हमारे जहन में गलत फहमी है कि जिस आदमी को कशफुल कबूर हासिल है वो साहिब कबर से उसकी मुलाकात हो जाती है और उससे गुफ्तगू कर लेते हैं। यहां तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस इंसान को कशफुल कबूर हासिल है वो जिस भी कब्र पर जाके खड़ा होगा और फातह के लिए हाथ उठाएगा उसका वो कश्फ जारी हो जाएगा और उस कश्फ के जरिए से साहिब कब्र से मुलाकात हो जाती है। और इसमें भी शक नहीं कि उस मुलाकात में गुफ्तगू भी होती है, लेकिन इससे आगे के अहवाल जरा हमारी तवक्कुआत से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं कि वो जो मुलाकात होती है और उसमें गुफ्तगू होती है उसमें साहिब कब्र किसी तौर ये नहीं बताते कि साथ वाली कब्र में मुर्दे के साथ कोई खजाना भी दफन किया गया था। अब ला का इसरार कर लीजिए वो इधर को आएंगे नहीं साहिब कब्र, ना वो ये बताएंगे कि साहब ये जो नजला जुकाम था उसका मैंने इलाज नहीं किया और मेरी लापरवाही से बिगड़ गया, जब इतना बिगड़ गया कि वो डॉक्टर के काबू में नहीं आ रहा तो मैंने इल्ज़ाम दे दिया किसी ऐसे आदमी को जिससे मैंने उधार लिया था, वो तकाजा करने रोज आता था और मैंने उससे मारपीट कर डाली, तो उससे मेरी दुश्मनी हो गई थी, उसने कोई जादू किया इसलिए ये नज़ला बिगड़ा है मेरा। तो वो ये भी नहीं बताएंगे कि किसने जादू किया था, बल्कि होगा ये कि जब कहीं आपने जुबान खोली किसी ऐसे मौजू पे वो नाराज़गी हो जाती है। और देखा ये गया है कि इसके बाद आमतौर पर सज़ा के तौर पर कुछ अरसे के लिए कशफुल कबूर बंद हो जाता है। तो वो मुलाकातें वहीं होती हैं कि आप जाइए उनसे गुफ्तगू हो जाएगी, तो उस गुफ्तगू में इसमें रूहानी मामलात सेर बहस आ जाएंगे और रूहानियत में तो ये आप जानते ही हैं कि सवाए मशक्क़तों के और कुछ है नहीं। तो जिस मर्तबा जाएंगे हम नमाज को बख्शवाने की नीयत से रोजे गले पड़ते रहेंगे कि हर मर्तबा हम तो इस नीयत से गए कि आज साहिब कब्र से मुलाकात होगी तो उससे पूछ लेंगे कि ये बता दो भाई मेरे घर के रास्ते में 1947 में हिंदू सिख कहाँ कोई हंडिया दबा गए थे जेवरात से भरी हुई, पूछने तो हम ये जाएंगे और वो कोई ना कोई और रूहानी मशक्कत डाल देंगे कि वजीफा पढ़ा करो, जो दो घंटे की नींद रह गई थी रात भर में वो भी जाती रहेगी। तो ये कशफुल कबूर के बारे में मैं ये वाजे करना चाहता था। और कशफुल कबूर का हासिल करना इंतहाई आसान होता है, सबसे सहल यही है, दूसरे कशफ खासे दुश्वार हैं। और ख़ास तौर पे जो कशफ शख्सी होता है वो खासा दुश्वार है क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉब्लम आएगी कशफ शख्सी के अंदर, उसका ताल्लुक है वो सामने जो आपका मुखातिब है उससे, उसकी शख्सियत से, उसकी जहनी कुव्वत से और सबसे बढ़कर उसकी रूहानी कुव्वत से। अगर आपका मुखातिब कोई खुद साहिब इल्म है तो वहां अब ये डिपेंड करेगा जिस तरह से पानी के बारे में कहा जाता है कि पानी अपनी सतह मेंटेन करता है, लेवल मेंटेन करता है, तो जिस तरफ पानी कम होता है उस तरफ का वो सब पानी बहकर आ जाएगा और लेवल मेंटेन कर लेगा। इल्म में इसके बरक्स है तो यही फार्मूला, लेकिन बरक्स है कि जहां कम इल्म होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी तरफ जहां स्ट्रेंथ ज्यादा है। लोग कहते हैं कि फलाने उसका इल्म सल्ब कर लिया, वो सल्ब तो बहुत कम केसेस में होता, किया जाता है, करते हैं लोग, लेकिन ये मैं अर्ज कर दूं कि इस तरह से किसी का इल्म सल्ब करना गुनाह है रूहानियत की उसमें, क्योंकि किसी की मेहनत को आप कब्जे में ले रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा है कि किसी ने मेहनत से पैसा कमाया, आपने बज़ोर कुव्वत उससे वो पैसा छीन लिया, इसी तरह उसने इल्म मेहनत से हासिल किया है, उसकी मर्जी के खिलाफ आप उसके इल्म को सल्ब कर रहे हैं तो ये डाका धनी है और ये गुनाह है, किया ये जाता है, करते हैं लोग। लेकिन ज्यादातर केसेस में होता यह है कि कम इल्म रखने वाला बंदा बाज़कार टकरा जाता है ज्यादा इल्म वाले से, तो ज्यादा इल्म वाले ने ऐसा नहीं चाहा होगा कि कम इल्म वाले का इल्म छीन कर ले जाए, لیکن کم علم والے نے کہیں انجانے میں اس کو چیلنج کر دیا تو علم چلا گیا، سلب ہو گیا، ایسا ہو جاتا ہے. تو کیف شخصی کے اندر اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ جس آدمی کے بارے میں آپ کشف کے ذریعے دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ خود صاحب علم ہے اور آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو ٹیڑھا ہو جائے گا معاملہ. اگر اس کا علم بھی آپ کے علم کے برابر ہے تو آپ کا کشف جاری نہیں ہونے پائے گا. کشف تو جاری ہو رہا لیکن اس پر سکرین نہیں آ رہی. بالکل ایسا ہے کہ اگر ایک ہی جگہ پر دو ریڈیو اسٹیشن ہوں اور ایک ہی سٹرنگتھ کے ٹرانسمیٹرز لگے ہوئے ہوں، فار انسٹنس اگر 5 kW کے دو ٹرانسمیٹر پاس پاس ہیں تو وہ ایک دوسرے کو جیم کر دیں گے آٹومیٹیکلی، دونوں ہی جگہوں پر کچھ سمجھ نہیں آئے گا. تو وہ یوں وہ کشف جو ہے جاری تو ہوتا ہے لیکن دکھائی کچھ نہیں دے رہا اسے. یا اگر انسان بہت زیادہ سٹرونگ ذہنی قوتیں رکھتا ہے تو افیکٹ ہو جائے گا اس کشف شخصی سے. یا تو پھر یہ ہے کہ ایسے کشف میں مبتلا ہونے والا انسان روحانیت کے بہت بلند مقام پر ہو تو وہ اوور پار کرے ہر قسم کی چیزوں کو، اور جو آدمی روحانیت کے اس مقام پر چلا جائے گا وہ کبھی کسی کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، وہ تو گھبراتا ہے اس سے. تو ایک کشف شخصی بہت خاصا دشوار رہی، میں نے اسے بہت مشکل پایا کہ اس میں نشے و فراز بہت آتے ہیں. ویسے تو کشف القبور میں بھی ایسی صورتحال کئی بار بن جاتی ہے کہ صاحب قبر بہت بلند مقام پر ہیں لیکن وہاں معاملہ چونکہ ایک طرف روح ہے دوسری طرف زندہ انسان ہے تو بچا رہتا ہے انسان. کہ وہ صاحب قبر جو ہیں ایک تو چونکہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، روحانیت کے بہت اعلیٰ مقام پر ہیں، مہربان ہوتے ہیں عام طور پہ یہ لوگ، تو وقت کے بہت ہی جلالی نہ ہوں وہ مروڑ دیتے ہیں آدمی کو. لیکن ایسے بہت ہی خال خال ہیں ایسے لوگ، ورنہ بڑے مہربان ہوتے. تو ہوگا کیا کہ اگر کوئی بہت کم علم رکھنے والا گیا، حاضری دی صاحب مزار کے حضور، ملاقات ہو گئی، اب وہ صاحب مزار جو ہیں علم کے بہت ہی اعلیٰ مقام پر تھے، تو ہوگا یہ کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ایک بار تو جائے گا اور اس سے 10 گنا زیادہ ہو کے وہ واپس آئے گا. پھر بالکل ایسا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بچہ اگر 3 سال کا 4 سال کا آیا، اس کے ہاتھ میں 5 روپے کا ایک نوٹ ہے، وہ آپ سے کہتا ہے دیکھو میرے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ بچہ آپ کو دکھا رہا ہے بہت پیسے ہیں دیکھو کتنے ہیں، تو آپ مذاق سے فوراً آپ کا ایک نیچرل ری ایکشن ہوتا ہے کہ پیار سے اور مذاق سے بچے سے آدمی کہتا ہے لاؤ مجھے دے دو. تو اگر اس طرح سے کہنے والا دل کا بھی بڑا ہے، عمر کا تو ہے ہی ہے، اگر دل کا بھی بڑا ہے تو وہ اس سے 5 روپے لے کے شاید 1000 روپے کا نوٹ دے دے گا کہ یہ لے لو. تو کشف القبور میں رسک کم ہے کہ صاحب مزار چونکہ بہت بڑا آدمی ہے تو آپ سے لے کے پھر رکھتا نہیں، اس سے 10 گنا کر کے واپس کر دیتا ہے کہ یہ لے لو جاؤ. تو آدمی فائدے سے آتا ہے کہ وہ کشف کی سٹرنگ بہت بڑھ گئی ہوتی ہے. لیکن یہ ذرا سا احتیاط آدمی کو کرنی چاہیے کہ کہیں صاحب مزار سے جب ملاقات ہو کشف کے ذریعے تو پھر اس سے وہ کچھ حاصل کرنے کی نہ کوشش کی جائے جو آج کل آپ حضرات بسم اللہ کے وظیفے سے کر رہے ہیں. یہ حقیقت یہ ہے کہ روحانی علم میں دنیا کے حصول کی نیت کا کہیں دخل نہیں ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے روحانیت میں، اور اسی لیے یہ انہی لوگوں کے پاس پنپتا ہے، پھلتا پھولتا ہے جن کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی ہوتی ہے، جو صرف دینا جانتے ہیں لیتے نہیں، یہ انہی کے پاس پھلتا پھولتا. اور ایک زمانے میں ہم یہ سنتے تھے کہ قلب پر ضرب لگانی چاہیے، اور وہ ضرب لا الہ الا اللہ اب بھی لوگ بھی کام کرتے ہیں، وہ در حقیقت نفی اور اثبات کی ضرب ہے. لیکن بعد میں یہ سیکھا کہ قلب پر ضرب چاہے اللہ کی لگائی جائے یا نفی اور اثبات کی ہو، لا الہ الا اللہ کی ضرب ہو قلب پر، اس سے قلب کمزور ہوتا ہے، دل کمزور ہوتا ہے فزیکلی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کا دل بہت ہی زیادہ سخت ہے اور اس کو نرم کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے جس سے قلب کمزور نہیں ہوتا، वो ये है कि जब नमाज के बाद हम सलाम फेरते हैं सिर्फ तीन बार इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ये कल्ब पर ज़र्ब लगा लिया है। लेकिन उस सूरत में अगर कल्ब बहुत सख्त है और इसमें नरमी किसी तौर पैदा नहीं हो रही तो ये इतना काफ़ी है, हर नमाज के बाद ये तीन बार कर लिया जाए। और अगर वो पहले से नरम है, उसमें गुदाज है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे नज़दीक तो दिल में गुदाज पैदा करने का आसान तरीका वही है जो रब ताला इस्तेमाल करता है। कि ये जो इंसान पर तोहमतें लगती हैं, इल्ज़ामात लगते हैं, बोहतान लगते हैं, लोग ताने देते हैं, बातें बनाते हैं, इससे दिल पर मैंने ही वैसे ही छुरियां चलती हैं जैसे किसान ज़मीन में हल चला रहा होता है। तो जो समझदार किसान है वो हल का फल ज़मीन में बहुत गहराई में गाड़ता है, फिर उससे वो हल चलाता है तो बहुत गहराई तक ज़मीन फटती चली जाती, कटती जाती। अब ये अकेला यही चीज़ जो है ये अकेले भी काम नहीं कर पाती इब्तदा में। उसके लिए वो इब्तदा जो होती है वो यही होती है कि माली तंगी आना शुरू हो जाती है। इंसान अगर अकेला हो तो उस माली तंगी को हंसते खेलते शायद झेल जाए। दुश्वारी वहां आन पड़ती है जब डिपेंडेंट्स इंसान के होते हैं, उनकी जरूरियात वो बहुत परेशान करती हैं इंसान को। तमाम तर कोशिशों के बावजूद, भाग दौड़ के बावजूद माली वसाइल हासिल नहीं होते, घर से जूते पड़ते हैं, औलाद डिमांड्स करती है, खुद अपनी भूख तंग कर रही होती है। इन तमाम बातों के साथ साथ जब बहतान लगते हैं, तोहमतें लगती हैं, इल्ज़ामात लगते हैं, ताने सुनने को मिलते हैं, तो फिर जो दिल पर असर होता है, और मज़ा ये है कि पाबंदी ये है कि आप एक लफ्ज़ बोल नहीं सकते, ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकाल सकते, किसी को ये नहीं कह सकते कि साहब आपने ये झूठा इल्ज़ाम लगा दिया मेरे ऊपर। तो बस एक खामोशी है जो तारी होती है इंसान पे। हर तरह की बातें आदमी सुनता है और सिर्फ जवाब में एक हल्की सी मुस्कुराहट देता है, यही जवाब है। तो अंदर जो कुछ हाल होता है दिल का वो गुदास पैदा करता है कि इंसान सो नहीं सकता, याद आती हैं बातें, कह सकता नहीं किसी को, इजहार नहीं कर सकता। उससे जो गुदास पैदा होता है सही मानों में इल्म वहां उतरता है फिर, और वहां फलता फूलता है, और वहां पर बड़ी तेजी से कश्फ जारी होता है। ये एक खास बात है। आप में से जो साहब कश्फ जारी करवाने के शौकीन हैं, जिनको ख्वाहिश है, तो ये देख लीजिए कि इससे पहले की जो शरायत हैं किस राह से गुजरना पड़ेगा। तो मुझे एक साहब बहुत पसंद आए, मेरा ख्याल है 1986 या 87 की बात, वो तशरीफ़ लाए मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि देखिए शाह साहब, मैं कोई दुनिया की दुआ तो कराने नहीं आया आपसे, दुनिया तो अल्लाह ने बहुत अता की, रुपया पैसा इज्जत ओहदा हर चीज़ अल्लाह ने बहुत अता फरमाई है, मैं तो आया हूँ आपके पास रूहानियत के लिए, रूहानियत चाहिए। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि एक बार फिर सोच लीजिए, इसमें बड़ी मशक्क़तें हैं। कहने नहीं, मैं सोच के आया हूँ और मेरे पास बड़ी मालूमात हैं और मैं इस राह को जानता हूँ, शासन अनाड़ी नहीं हूँ। इसी जगह बैठे हुए ये बात हुई थी, 86 की बात है शायद। मैंने कहा जी मैं अपना फ़र्ज पूरा कर रहा हूँ, तीन बार आपको मैं वार्न करना चाहता हूँ कि जिस राह पर आप कदम रख रहे हैं उसके अंदर तकलीफ़ें आपको क्या क्या आएंगी ये बता देना मेरा फ़र्ज़ है, उसके बावजूद अगर आप फैसला करेंगे तो मैं हाजिर हूँ। तो मैंने तीन मरतबा उनसे ये बात पूछ ली और तीनों मरतबा ने कहा जी नहीं, मैं तो फैसला करके आया हूँ, मुझे मालूम है मेरे साथ क्या बीतेगी। ठीक है जनाब। तो मैंने उनको पढ़ने के लिए कुछ दे दिया। शुरू के दो तीन दिन तो बगैर किसी वाक़े के गुजर गए और कुछ नहीं हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन पर तंगी तारी होनी शुरू हुई, माली तंगी। गालिबन 15 या 20 दिन के बाद वो यहीं बैठे हुए थे और उनके साथ और कई एक आदमी थे, मुझे कहने लगे शाह साहब ये पढ़ाई लेना आप वापस, मुझे ये ऐसी रूहानियत नहीं चाहिए जो फाके मार दे। तो मैंने कहा जी मैंने तो आपसे पहले कहा था। कहने मैं समझा ऐसी थोड़ी फाका कशी होगी। तो वो मुझे लौटा गए जो कुछ उनको पढ़ने को दिया था मैंने। तो इस लिहाज से मुझे पसंद आया कि बड़ी साफ गोई सी उन्होंने मुझसे बात कर ली। तो ये चूंकि गुज़श्ता दो हफ्ते में 4-5 हजरात मुझसे कह चुके थे कशफुल कबूर के बारे में, तो मुझे ख्याल आया कि वो इतने लंबे दुआ के सेशन के बाद जहन तो काम नहीं कर पा रहा था कि क्या मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के कशफुल कबूर के बारे में उनकी खिदमत में अर्ज़ कर देता। तो ये सब कुछ सुनने के बाद भी अगर उनका यही फैसला है कि उन्हें कशफुल कबूर चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर किसी साहब के जहन में कोई सवाल हो तो
कुल कशफ की कितनी किस्में हैं जिसमें से दो का आपने जिक्र फरमाया?
बहुत ज़्यादा किस्में हैं, मैंने शायद किसी पिछली नशिस्त में ये इसका जिक्र किया था। हम असल में इसे दो तरह से लेते हैं। एक तो वो कशफ है जिस पर हमारा किसी इंसान के इख्तियार नहीं होता। इंसान बैठा किसी के साथ बातें कर रहा, बातें करते करते कशफ जारी हो गया, दिखाई देने लगा, नमाज पढ़ रहा है, नमाज के फौरन बाद कश्फ जारी हो गया, कुरान पाठ पढ़ते पढ़ते कश्फ जारी हो गया। ये अक्सर औलिया इकराम को अता होता है। एक दूसरी किस्म पे कश्फ की कि जब चाहा हालत कश्फ में दाखिल हो गया इंसान, वो कश्फ इख्तियारी है और वो कम लोगों के हासिल होता है। तो हम तो दर हकीकत उसी इन दो ही के ऊपर रहते हैं। हमारी नजर इस पर रहती है कि हमें ऐसा कश्फ मिल जाए कि जब चाहा हालत कश्फ में दाखिल हो गए। फिर मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि आम तौर पर इसकी तरतीब इस तरह से होती है कि सबसे पहले जमीन से मुतालिक कश्फ हासिल होता है, फिर समुंदर से मुतालिक, उसके बाद आसमान से मुतालिक। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी तरतीब से आए। कुछ लोगों को सबसे पहले आसमान से मुतालिक कश्फ हासिल हो जाता, फिर समुंदर, फिर ज़मीन, या फिर ज़मीन फिर समुंदर। तो वो डिपेंड करता है। अब ये तीन उसकी मेजर किस्में हैं। फिर आगे उसकी फिर और सब किस्में आ जाएंगी उसकी, जिसमें कश्फ कल्बी है, कश्फ शख्सी है, कश्फुल कबूर है इसका। तो वो बेपनाह है और दयानदारी की बात है कि शायद ऐसे जुबानी मुझे भी पूरी किस्म उसकी याद ना हो। बेपनाह है।
अच्छा सर, ये इस जो आपने आज गुफ्तगू की है इससे हटके एक सवाल मैं करना चाह रहा था, वो है कि ऐसा आजकल जो है वो हमारे मुल्क की जो है वो जो सूरत हाल है उसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी सी जो है वो रहती है, जिसकी वजह से कभी परेशानी भी होती है। तो इस सूरत हाल से हम कब तक निकलेंगे, कोई बेहतरी जो है वो मुस्तकबिल करीब में कुछ है?
देखिए, ये मुल्क एक खास मकसद के तहत परवरदिगार वजूद में लाया इसे, और ये मुल्क उस मकसद को पूरा करेगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए जितने भी आप फकीरों से सवाल करेंगे वो फौरी तौर पे जवाब देंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को कुछ नहीं होता, ये कायम दायम रहेगा। बाकी ऊंच नीच, टर्बुलेंस, ये हर मुल्क में होती है, मायूसी की कोई वजह है नहीं। हमारे यहाँ बहुत सी तरबियत होना बाकी है लोगों की, वो तरबियत जब हो गई तो फिर ये टर्बुलेंस इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी दिखाई देती है। आज भी अगर हमारे यहाँ दो चीज़ें अगर हो जाएं, तालीम आम हो जाए और मालूमात तक दस्तरस हो, तो फिर शायद सूरत हाल इतनी फ्रीक्वेंटली ऐसी ना हुआ करे, क्योंकि मालूमात की हमारे यहाँ बेपनाह कमी है। जिस तरह हमारी कौमी ज़ुबान में एक मुहावरा है उर्दू में, नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान, तो जितनी कम हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी हम अफवाहों पर उतनी ही जल्दी यकीन करेंगे या उतनी ही जल्दी कोई भी हमें अपने नुक्ता नज़र से मुत्तफिक करा लेगा। अगर मुल्की मामलात और कौमी मामलात हमारे पास मालूमात खासी हों तो फिर हम अपने जहन से फैसला करने की पोजीशन में होंगे क्या चीज़ क्या है। आप किसी लर्नर्ड आदमी को ये कहिए कि साहब मेरे हाथ में अगर इकतदार आप दे दें तो मैं 2007 में 1990 वाली प्राइसेस वापस ले आऊँगा, तो अगर वो बहुत तहमल वाला आदमी है तो आपको कुछ नहीं कहेगा, खामोश हो जाएगा कि मैं इस किस्म की बात का जवाब क्या दूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कोई ऐसा कुलिया और कायदा नहीं है जिसके तहत आप कीमतों को वापस ले जा सकें। तो फिर आप किसी शख्स को अपने साथ मिला नहीं सकेंगे ये कह के कि मैं 1990 की कीमतें वापस ले आऊँगा। तो ये तालीम और मालूमात की कमी की वजह से ऐसा होता है कि हम क्योंकि अंधेरे में हैं तो हमें जो कुछ कोई बता दे तो हम ये समझ लेते हैं कि ये क्योंकि रोशनी में खड़ा है तो इसको हमसे बेहतर पता है, जो ये कह रहा वही सच है। तो मेरे ख्याल में तो परेशानी की कोई बात है नहीं, ये वक्ती मामलात हैं। इस तरह की हलचल मची है और टर्बुलेंस महसूस हो रही है, लेकिन जल्द ही अब देर इंशाल्लाह ताला ये मामला समझ जाएंगे, ठीक हो जाएगा।
सर जो बातें आपने दिल में गुदास पैदा करने के लिए बताई हैं, मसलन माली तंगी या मुआशरे की ठोकरें, इससे सर गुदास पैदा होने के बजाय नेगेटिव थिंकिंग भी तो बंदे में पैदा हो सकती है, नेगेटिव अप्रोच बंदा।
जब इंसान रूहानियत की तलाश में जो निकला है, बुनियादी चीज़ उसमें यह है कि ईमान की पुख्तगी है, रब पर भरोसा है, ये दो बुनियादी अंसर जब उस शख्स में बदरजा आतम मौजूद हैं तो ही वह रूहानियत की तलाश में निकलेगा। तो जिस आदमी के पास ये दो बुनियादी अंसर हैं वो कभी नेगेटिव साइड पर नहीं जाएगा। किसी महफिल में, काफ़ी पुरानी बात है ये, मेरा ख्याल है शायद बात होगी कोई 1996-95, तो वहाँ वो लोग बैठे थे जो उर्फ़ आम में इंटेलिजेंशिया कहलाते हैं। गुफ्तगू का रुख मुल्की हालात की तरफ हो गया। एक साहब बड़ी शिद्दत से इस बात की वकालत कर रहे थे कि साहब चूँकि मुल्क में गुर्बत बहुत है इस वजह से रिश्वत और बेईमानी ज़्यादा है। तो मैंने भी वहाँ उनसे गुजारिश की कि जनाब अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो मैं भी कुछ अर्ज़ करूँ आपसे, सिर्फ एक नुक्ता मुझे क्लियर कर दीजिए। हिजरत के पहले 3 या 4 सालों, हत्ता के पहले 5 सालों में, हिजरत के 10 साल मुसलमानों में जो गुर्बत थी, क्या आज गुर्बत उससे ज़्यादा है? अब वहाँ तो गुर्बत का ये आलम था कि पेट पे पत्थर बांध के काम करते थे मुसलमान के, भूख ना महसूस होने पाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो किसी को पेट पे पत्थर नहीं बांधना पड़ता हमारे यहाँ। तो उस वक्त मौजूदा दौर से कमोबेश 1000 गुना ज़्यादा गुर्बत मुसलमानों ने देखी है, लेकिन ना रिश्वत थी, ना बेईमानी, ना चोरी, ना चकारी। वजह यह थी कि रब पर ईमान बड़ा मजबूत था और इस्लाम अपनी सही शक्ल में नाफिज था, और माशरे में नाफिज नहीं था, दिलों में नाफिज था, क्योंकि माशरा इंडिविजुअल से मिलकर बनता है। तो दिलों पर इस्लाम के नाफिज हो जाने के बाद जो माशरा था वो प्योरली इस्लामी हो गया हुआ था। तो जब इंसान के दिल में ईमान होता है तो फिर वो नेगेटिव साइड पर नहीं जाता, फिर वो अपने रब के साथ मुंसलिक रहता है।
सब आपने बात की है कि कश्फे कबूर और कश्फे शख्सी के ऊपर, तो यानी कि कोई हमें कोई कश्फ की ऐसी किस्म भी मिलती है जिसके अंदर हम अपने आप को जान सकें।
बात यह है कि एक बहुत मशहूर चीज कही जाती है कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने रब को पहचाना। तो रूहानियत की बुनियाद पड़ेगी ही वहाँ जहाँ इंसान खुद से आगाह हो जाएगा। जब वो खुद से आगाह होगा तो अपनी खामियों को दूर कर पाएगा, और अपनी खूबियों को उजागर कर पाएगा। तो इसलिए कश्फ के जरिए अपने आप को देखने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो आज खुद बहुत पहले इंसान अपने आप को देख चुका होता कि मैं क्या हूं, तो वो तो इब्तदा ही वहां है।